ओम शांति। आज हम क्रोध के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके कारण की भी कुछ चर्चा करेंगे। आमतौर पर क्रोध में आकर लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे, परंतु मर के भी अगर चैन न मिले तो बोलो कहाँ जाएंगे,
वापस यही आएंगे।
तो इसलिए मरना वह सॉल्यूशन नहीं है, वास्तव में उस पर विजय प्राप्त करना, क्रोध को अलविदा करना, वह सबसे बड़ी बात है। अधिकतर कहीं एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं कि भाई कैसे क्रोध करना, वह सिखाते हैं। तो मैं कहता, जब आप ये समझते हैं कि ऐसे क्रोध करना है, ऐसे क्रोध करना है, उससे तो उसमें तो एक डायलेमा होता है, एक हम कंफ्यूज होते हैं कि भी करे या ना करे। परंतु सबसे अच्छी बात तो है कि उससे ऊपर उठना है, हाँ करना ही नहीं, या तो उससे ऊपर उठना है। अभी करना नहीं वो भी कई बार फोर्स हो जाता है, हाँ फिर फोर्स करेंगे तो वो बात अच्छी नहीं, पैसे फिर से दबाने वाली बात होगी। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भले हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एक आत्मा की स्थिति को बनाना पड़ेगा, परंतु अगर हम परिस्थितियों से ऊपर उठ ले तो आपके सामने प्रश्न ही नहीं रहेगा कि क्रोध करे या ना करे, वो डायलेमा जो है वही नहीं रहेगा। तो पहले तो हम थोड़ा सा यह समझे कि इसके परिणाम क्या होते हैं। एक तो कहेंगे कि यह भी एक साइकोलॉजिकल न्यूमोनिया है, जैसे जिनको न्यूमोनिया होता है ना, सांस नहीं ले सकते ठीक से, तो ऐसे ही जब क्रोध होता है तो भी हम जो जीवन है वह जीवन का आनंद नहीं ले सकते, जीवन का जो थोड़ा भी सुख है वह सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। और क्रोध मुख्य रूप से आपके हार्ट पर असर करता है। देखो हार्ट पर क्रोध की क्या इफेक्ट होती है, आप भी कहेंगे कि अरे डॉक्टर लोग कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, परंतु सचमुच ऐसा प्रयोग किया गया है कि कुत्ते पर ये देखने की कोशिश की कि क्रोध से क्या इफेक्ट होती है ना। उसकी छाती को ओपन किया गया और फिर एक क्लैंप लगाया गया कि हृदय में भी खून पहुंचाने वाली नलिकाएं, कोरोनरी ब्लड वेसल्स कहते, उस पर एक क्लैंप लगाया गया ताकि थोड़ा खून पहुंचे परंतु पूरी मात्रा में न पहुंचे। ऐसी हमारी भी स्थिति होती है, कोरोनरी ब्लॉक्स हो जाते हैं ना, तो वह खून जाने की जो जगह छोटी हो जाती, 10% 20% ही रह जाती है। और फिर कुत्ते को गुस्सा दिलाया गया, कुत्ते को कैसे गुस्सा दिला सकते हैं, कैसे गुस्सा दिलाएंगे,
मार के
अच्छा, हाँ देखो क्या क्या पड़ा, हाँ हाँ दूसरा कुत्ता उसके सामने लाए, उसको खाना दिया, इसको नहीं दिया, और उसको खाना दिया तो ये भौंकने लगा ना। जब भौंकने लगा तो पहले तो जोर से ब्लड फ्लो हुआ और फिर अचानक ही उसे हार्ट अटैक आया और मृत्यु हो गई। तो ये बोले एक एक्सपेरिमेंटल चीज थी, परंतु साइंटिस्टों ने ये देखा कि हार्ट के नजदीक में एक सेंटर है कि जो ब्लड फ्लो करता है, तो एक बार तो जोर से उसने ब्लड फ्लो किया लेकिन फिर वो क्षणिक स्टॉप हो गया, तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाने से हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसी ही हमारी स्थिति भी हो सकती है, तुरंत ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपको अगर चेक भी करना हो तो आमतौर पर आपको भी पता होगा कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, और फिर जब कभी गुस्सा आए तो तुरंत उसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाओ और चेक कराओ, देखो आप पाएंगे आपका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया होगा। और यहां तक कि यह सत्य किस्सा है, एक बार एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में एक पैसे वाला व्यक्ति एडमिट हुआ, उसे माइल्ड हार्ट अटैक आया था और उसने नर्स को बुलाया, तो नर्स को आने में थोड़ी सी देरी हो गई तो एकदम गुस्से में आ गई, आप लोग क्या समझते हो, मैं इतना पैसे वाला हूं, करोड़ रुपए का केस करूंगा, मुझे कुछ होगा तो देख लेना, सारी हॉस्पिटल को खत्म कर दूंगा, ऐसे वैसे बोलने लगा। उसको जोर से दोबारा हार्ट अटैक आया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी ऑटोप्सी की गई तो देखा कि सचमुच उसका हार्ट फट गया, हार्ट अटैक ही नहीं आया था, हार्ट ही पूरा बस्ट ओपन हो गया था। तो डरना नहीं है, कई लोग ये सुन के ही डर जाते कि क्या होगा, परंतु सत्य बात है कि ऐसा परिणाम भी हो सकता है। तो इसलिए हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, उन युक्तियों को अपनानी है। दूसरी बात जो हम सब जानते हैं कि जैसे गुस्से में आते हैं तो मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होती है, दिमाग भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी के कारण सर दर्द होने लगता है कई बार, क्योंकि मांसपेशियों पर दबाव आता है। तीसरा बहुत ही बुरा परिणाम है कि हमारे में एक रोग प्रतिकारक शक्ति है कि वातावरण में भी कीटाणु, अब यहां स्टूडियो में भी कुछ न कुछ सूक्ष्म वायरसेस है, परंतु उसकी हम पर असर नहीं होती है क्योंकि हमारे में वह रोग प्रतिकारक शक्ति है। और एक हार्मोन है जिसको कहते हैं कोर्टिसोल, है ना, जितना कोर्टिसोल बढ़े ये रोग प्रतिकारक शक्ति कम होगी। तो क्रोध से तुरंत ही यह कोर्टिसोल की मात्रा है वह बढ़ जाती है, तो इसके कारण आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। कोर्टिसोल बढ़ने से दिमाग पर भी बुरा असर होता है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई कहे सब भले हो मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा, अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट लूंगा, परंतु जो सबसे बुरा प्रभाव है कि गुस्से से हमारे दिमाग में सूक्ष्म नलिकाएं हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं, कि बाल से भी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, तो ये जो नलिकाएं हैं एक तो उसमें खून का भ्रमण कम हो जाता है और कई बार वो फूट भी जाती है, इतनी पतली है कि वह नलिकाएं फूट भी जाती, बल तुरंत पता नहीं चलता है, परंतु अगर लंबा समय के बाद देखो तो सप्ताह में 3 बार आपको गुस्सा आता है, तो थोड़ा थोड़ा वो नुकसान होता ही रहता है और कुछ वर्षों में दिमाग पर भी काफी नेगेटिव परिणाम हो सकता है। तो इन सभी बातों को आप देखो, हाँ इन सभी बातों को भी आप अगर इस पर भी सोचेंगे तो भी इच्छा होगी कि इस पर हम विजय प्राप्त करें। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं?
उसी को ही हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं।
लेकिन वो ब्रेन हेमरेज में ना बड़ी नलिकाएं फटती है, जब तुरंत पैरालिसिस हो, हेमरेज हुआ पैरालिसिस हो गया, वो बड़ी नलिकाएं फटती है। ये जो कैपिलरीज है बहुत ही सूक्ष्म है, तुरंत पता नहीं चलता है, आपका कार्य ठीक से हो रहा है, कोई दिमाग पर शरीर पर इफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बार बार होता है। क्रोध तो हम बार बार करते हैं, तो बार बार आप करते रहते हैं तो देखो 5 साल के बाद 10 साल के बाद जो कलेक्टिव इफेक्ट होगी कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी काफी हद तक कम हो जाएगी।
डॉक्टर साहब, क्या ये मेमोरी पर भी कुछ इफेक्ट
डाल सकता है? डेफिनेटली डालेगा ना
जी, मेमोरी लॉस भी होता है।
हाँ, कैपिलरीज जब फटेगी तो नहीं कुछ हिस्से को डैमेज होगा और अल्टीमेटली मेमोरी लॉस भी होगी, और क्रोध से तो ऐसे भी मेमोरी लॉस होगी, क्योंकि मेमोरी क्या है कि आपने कोई बात सुनी है पढ़ी है उसको दोबारा याद करने की कैपेसिटी है ना, दोबारा उसे याद करना होगा, और अगर उसे दोबारा याद करना हो तो हमारे ब्रेन में सर्किट्स बने हुए, जैसे ना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं ना, कहीं आप देखो टीवी में आदि में सर्किट्स होते हैं, तो ऐसे ही दिमाग में भी सर्किट्स बने हुए जिसको एनग्राम्स कहते हैं। तो ये एनग्राम्स जब कंप्लीट हो जाए तो वह पास्ट की बात आपको याद आ जाती है। तो क्रोध से अगर डैमेज हुआ है, आपका मन कंफ्यूज हुआ है, गिल्ट की फीलिंग भी होती है क्रोध के बाद, तो इन सब से आप उन एनग्राम्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, और जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो रिकॉलिंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो ऐसे दिमाग पर भी इसका बुरा असर होता है। तो इन सब चीजों को मिला करके आप भी ये कन्विंस जरूर हुए होंगे कि हमको अवश्य ही पुरुषार्थ करना है कि क्रोध पर हम विजय प्राप्त करें, है ना, और यह कन्विक्शन जरूरी है ना। जितना वह कन्विक्शन होगा तब आप फिर जो आवश्यक स्टेप्स है वह आवश्यक स्टेप्स भी उठाएंगे। और सचमुच जो समझने की बात है वह यह है कि बाह्य परिस्थितियां जैसी आपको दिखाई देती हैं वैसी नहीं है। सच देखो तो हम भी जैसे दिखाई देते हैं ना वैसे नहीं है। देखिए आप पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? सीधी गोल, देखिए कभी
सीधी
गोल है ना, सीधी दिखाई, पृथ्वी तो सीधी दिखाई देती है, परंतु हम जानते हैं कि सचमुच पृथ्वी तो गोल है ना। आप सूर्य को देखते हो तो भी क्या दिखाई देता है कि सूर्य पृथ्वी की ओर चक्कर लगा रहा है ना, सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, जैसे सूर्य पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहा है, परंतु सत्य क्या है?
पृथ्वी सूर्य की
सत्य है, पृथ्वी सूर्य की आसपास चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम शरीर को भी देखें, देखिए जो हाथ अभी दिखाई दे रहे है ना, तो आंखों से देखते तो ऐसे दिखाई देते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? हाँ, सेल्स दिखाई देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो उसके भी जो सेल्स के भी पार्टिकल से अलग अलग न्यूक्लियस आदि दिखाई देगा। और आप अगर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सोचो, क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि भी यह हाथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंपनों का बना हुआ है, हाँ वाइब्रेशंस का बना हुआ है, ये वाइब्रेशन सारे नजदीक आने से ऐसे हाथ है। तो सचमुच चीजें जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। तो बस ये भी अगर हम पक्का करें सचमुच अपने जीवन में कि भी हम भी जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है, हम भले शरीर दिखाई देता है परंतु हमारे में एक दिव्य चेतना है, उस दिव्य चेतना की शांति सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे नहीं आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि भी मोर इज बेटर, अब देखो कहीं पे भी जाएंगे ना तो भी ज्यादा मिले तो अच्छा है, भी तनख्वाह ज्यादा मिले तो अच्छा है, भी घर भी मेरा बड़ा हो तो अच्छा है, मेरी गाड़ी भी बड़ी हो तो अच्छा है। तो आज क्या है, मोर इज बेटर और बिगर इज बेटर, परंतु ये होना चाहिए कि पीस इज बेटर। मोर इज बेटर के बदले शांति सबसे इंपॉर्टेंट है। और नहीं हम सोचते हैं ना कि भी हम वेल ऑफ है, वेल ऑफ के बदले जरूरी है वेल बीइंग की जरूरत है, है ना। वेल बीइंग और वेल ऑफ में बहुत बड़ा फर्क है। यू मे नॉट बी वेल ऑफ, स्टिल यू कैन हैव अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, और आप वेल ऑफ हो तो भी वेल बीइंग की फीलिंग नहीं भी हो सकती है। देखो मेरे भी जो पेशेंट्स है ना, अधिकतर करोड़पति है, करोड़ों के उनके फ्लैट्स है, लेकिन बेचारों को नींद भी नहीं आती रात को, ना डिप्रेस्ड है, हाँ जीवन का आनंद ही खो बैठे हैं। तो पीस इज बेटर, मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें शांति का अनुभव करना है, और शांति का अनुभव करना है तो शांति ये पक्का समझ लो कहीं बाहर मिलनी नहीं है। अगर शांति बाहर मिलती तो पहले ही मिल गई होती। एक कहानी याद आती है, एक बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति थे, बहुत समय पहले की बात है, कि तब एक बार इन कीमती गहने लेकर के एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। तो रास्ते में जैसे वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में चढ़े, उन्होंने देखा कि एक चोर भी पीछे पीछे चढ़ा। तो पहले तो डर गए कि अभी क्या करूं, लेकिन फिर उनको एक युक्ति आई। उस चोर को कहा, भैया देख के आना यहाँ प्लेटफॉर्म पर पानी है क्या? तो चोर जल्दी जल्दी नीचे गया, वापस आया, हाँ कहते हैं सेठ यहाँ पानी है। तो जैसे ही सेठ नीचे उतरे, बस ढूंढने लगा कि नहीं बस कुछ तो माल जरूर होगा। सूटकेस खोल के देखी, कुछ नहीं मिला। गाड़ी शुरू हुई, सेठ आ गए, दूसरे स्टेशन पे फिर से उतर गए, तो फिर से उसने हैंडबैग खोल के देखा, हैंडबैग में भी कहीं नहीं मिला। बस ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक उसने सेठ का तकिया उठा करके भी देखा, कहीं उसके नीचे तो नहीं छिपाया, कपड़ों के अंदर पॉकेट में भी हाथ डाल के देखा, कहीं पे भी माल नहीं मिला। फिर जब अंतिम स्टेशन आने वाला था तो सेठ ने उसको पूछा, भैया तुझे माल नहीं मिला? तो कहते हैं, आपको कैसे पता चल गया कि मैं चोर हूं? तो सेठ ने कहा, पहले ही तू जैसे मेरे पीछे पीछे आया मुझे पक्का मालूम था। तो चोर ने कहा, सेठ अभी तो बता दो कि भी आपने ये माल कहां छिपाया है। तो सेठ ने धीरे से चोर का तकिया उठाया, उसके नीचे ही सारा माल रखा था। तो सेठ ने कहा, मुझे पक्का 100% मालूम था कि तू सचमुच ढूंढेगा, हाँ मेरे पॉकेट्स में भी हाथ डाल करके देखेगा, परंतु स्वप्न में भी तुझे ये विचार नहीं आएगा कि ये माल तेरे तकिए के नीचे छिपाया हुआ है। तो देखो भगवान भी वो सेठ की तरह ही है, भगवान को भी मालूम था कि आदमी शांति को ढूंढने वाला है, और अगर उसे शांति मिल गई तो मुझे ही भूल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, शांति को कहां छिपाई, ना? आपके अंदर ही छिपा दी। भगवान को मालूम था कि आदमी चांद पर भी जाएगा, मंगल पर भी जाने की कोशिश करेगा, परंतु कभी अपने अंदर एक इंच भी अंदर झांक के देखने वाला नहीं है। तो इसलिए सचमुच वो जो पीस मोर है ना, वह हमारे अंदर में ही है और अंतर्मुखी होकर के उसे ढूंढना है। अच्छा हाँ, कुछ मिला? राह मिली? हाँ, रास्ता मिला? हाँ कि ना, बोलते भी नहीं है, मिला? अच्छा हाँ, तो अभी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछो। हाँ, आपका कोई अनुभव? हाँ, भले भले, एक 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 कुछ। हाँ जी,
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि क्रोध हमारे खून में है।
हाँ जी,
संस्कार में मिला। हाँ, हमारे माता पिता दादा दादी करे तो डज इट रिलेटेड विद जीन्स और एनीथिंग?
इसे देखो ना, तो आज हर बात जीन्स पर है। कोई भी चीज देखो तो ये कहेंगे कि भाई ये जिसमें ये जीन्स होते हैं ना उसमें ज्यादा है, क्योंकि 100% तो कोई बात बता नहीं सकते। जीन्स की भी जो सारा साइंस है कि वो रिलेटिवली स्टडी किया जाता है कि जिनमें ये जीन्स है उनमें ये बीमारी कितनी ज्यादा है। तो ऐसे हो सकता है कि भी जो माता पिता को ज्यादा गुस्सा आता है तो बच्चों को भी थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ सकता है, या कोई बीमारी ज्यादा हो सकती है। परंतु एक बात बहुत जो जीन्स से संबंधित बात समझने जैसी है कि अच्छे अच्छे जो जीनेटिक एक्सपर्ट्स है वो भी इस बात को मानते हैं कि जीन्स क्या है, गोली से भरी बंदूक जैसे है। यहां पर गोली से भरी बंदूक हो, हाँ, तो उससे गोली छूटेगी? छूटेगी नहीं? छूटे? कब छूटेगी? जब ट्रिगर को दबाएंगे तो गोली छूटेगी। तो जीन्स वह गोली से भरी बंदूक जैसे है, और जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारे विचार है, वह ट्रिगर है। हाँ, कि अगर आप विचार में परिवर्तन करो तो ट्रिगर दबेगा ही नहीं। ध्यान का अभ्यास करना है, आध्यात्मिक बातों पर चिंतन करना, वह भी एक प्रकार से ट्रिगर है। उस पर आप चिंतन करो तो ट्रिगर दबेगा ही नहीं, और भले आप में जीन्स है तो भी आपको क्रोध नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, और भी भले एक प्रश्न पूछना हो तो।
सब जैसे हम अनुभव करते हैं ना कि क्रोध अपने आप आ जाता है, तो शांति अपने आप क्यों नहीं मिल जाती?
अच्छा, क्योंकि बहुत आदत हो गई ना क्रोध की। हाँ, क्रोध के संस्कार हो गए इसलिए क्रोध अपने आप आते हैं। शांति के भी संस्कार बना दो। देखो आज ने हम लोग ध्यान का अभ्यास करते, मेरे लिए भी कहीं कहते इनको क्रोध नहीं आता है। भले 100% ट्रूथ नहीं है, कभी कभी तो आता है लेकिन बहुत कम है। दूसरों की कंपैरिजन में कहेंगे कि भी 100 गुना गुस्सा कम है। क्यों? क्योंकि शांति का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिक वह स्टेज बनी। और जो ऑर्डिनरी परिस्थितियां होती है जो व्यक्ति को इरिटेट करती है, वो इरिटेट करते ही नहीं, तो ये भी संस्कार बन सकते हैं। शांति के संस्कार बनाना वो बहुत बड़ी बात है। और कोई भी संस्कार कैसे बनते हैं कि एक बार भल हमें थोड़ा सा फोर्स करके भी वह कार्य करना पड़ता है, परंतु फोर्स करके भी वह कार्य को करो, थोड़े दिन अगर उसे करते रहो तो ऑटोमेटिक संस्कार बन जाते हैं। कई लोगों को हम माउंट आबू भी ले जाते हैं योग की शिविर कराने के लिए, और पहले दिन जब उनको कहते हैं कि आपको सवेरे 4 बजे उठ के ध्यान करना, तो कहते बाप रे, जिंदगी में कभी 4 बजे नहीं उठे। तो पहले तो भले उनका दरवाजा जाके खटखटा देते, उनको उठा देते हैं, और जब 4 दिन सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं तो देखा है कि भाई ट्रेन में जब बंबई वापस आ रहे हैं तो 50% 4 बजे उठ गए होते हैं। क्यों? क्योंकि वह संस्कार 4 दिन वो किया, भले थोड़ा सा फोर्स करना पड़ा परंतु 4 दिन किया तो वह संस्कार हो गए। तो ऐसे ही पल अपने आप को बार बार याद दिला करके भी वह हम संस्कार डाले, ये कहे कि भी शांति सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंस सबसे जरूरी है, तो मुझे पेशेंस को रखना है। इसे कुछ समय कहेंगे तो संस्कार हो जाएंगे। दूसरा क्या करना है कि अपने आप को प्यार से समझाओ। मन प्यार की भाषा समझता है। जैसे बच्चा है कि भी आप सवेरे सवेरे ऑफिस जा रहे हैं और बच्चा कहता है कि नहीं नहीं डैडी मुझे साथ में ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, तुम्हारा पैर पकड़ लेता है, तो आप क्या करते? उसको डांटते नहीं है, उल्टा बच्चे को प्यार से समझाते। कि बेटे देखो अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, डैडी को जाना है, डैडी वापस आएंगे तो तुमको खिलौना पसंद है ना, वो खिलौना तुम्हारे लिए मैं जरूर ले आऊंगा। तो देखो जैसे ही प्यार से समझाया, बच्चे को समझ में आ गया कि मुझे खिलौना मिलने वाला है, तो वो शांत हो जाएगा। तो मन का भी ऐसा ही है ना, मन को प्यार से समझाओ। क्या नाम है?
राम कुमार।
हाँ देखो अपने आप को अपने नाम से को राम कुमार शांति रख, तुझे जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, है ना। अपने नाम से बार बार भी बोलो कि राम कुमार तुमको जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, पहले तुम शांत हो जाओ। और सच बात भी है कि हड़बड़ी में चीजें नहीं मिलती, उल्टी हम गलतियां कर बैठते। शांत रहेंगे तो सही निर्णय कर सकेंगे, सही कर्म भी कर सकेंगे और वह चीज मिलेगी। इसलिए से प्यार से समझाओ कि भी जो चाहिए वह सब कुछ तुमको मिलेगा, तुम शांति रहो। शांति से ही फायदा है, सोल्यूशन भी शांति में ही है। ऐसा कई बार अगर प्यार से समझाओ तो मन मान जाएगा। अभी बुद्धि को तर्क से समझानी है, बुद्धि पर प्यार की असर नहीं होती है। बुद्धि क्या करती है? दिशा देती है। बुद्धि प्रेफरेंस करती है, बुद्धि वेइंग स्केल का काम करती है, है ना। परिस्थिति का भी कितना वजन है वह बुद्धि वो डिसाइड करती है। और बुद्धि पर तर्क की इफेक्ट होती है, है ना। कोई भी बात को तर्क से समझा दो तो उस पर इफेक्ट होगी। जैसे मेरा एक मित्र है, इंजीनियर है ना, तो पहले तो उसको मैरिज करने थे, अमेरिका की लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन काफी समय कोशिश की, लड़की नहीं मिली, तो उसने एंगेजमेंट कर लिए और एंगेजमेंट हुए और कुछ समय के बाद एक अमेरिका की लड़की मिल गई, तो इस एंगेजमेंट को तोड़ दिया उसने। तो लड़की एकदम डिस्टर्ब हो गई, डिप्रेस भी, उसे बहुत गुस्सा भी आया कि इसका बदला लूंगी, वहां जाके उसको बोलूंगी ये हुआ ऐसा हुआ है, बहुत कुछ उसे गुस्सा आया। फिर उसे एक बार हमने तर्क से समझाया कि देखो कि ये जो हुआ सोचो अच्छा हुआ, कि ये लड़का जो ऐसा है कि जो आपके प्रति फेथफुल ही नहीं है, हाँ मैरिज होने के बाद तो और प्रॉब्लम होता है, और इजीली तुमको छोड़ देता और कोई और ज्यादा फंस जाते। मैं कहते ना कि तवे से कूदे तो आग में पड़े, हाँ ऐसी हो सकता है कि तुम्हारी स्थिति होगी। मैरिज से पहले ये टूट गया बहुत अच्छा है, हाँ उसको ये तर्क मिल गया, बस एक बात उसको मिल गई कि भी अच्छा हुआ, भाई तवे पे मैं तप रही हूं लेकिन आग में पड़ती तो और दुखी होती, तो बस उसका मन शांत हो गया, डिप्रेशन गुस्सा खत्म हो गया। तो ऐसे बुद्धि को तर्क से समझाओ तो भी धीरे धीरे वह संस्कार है वह पड़ने लगेंगे।
और डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा आपको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें भरा हुआ है कि वो आपको इन्फीरियर ही दिखाना चाहता है हर जगह।
हाँ जी हाँ।
तो उस हालत में आप क्या करें?
पहले तो देखो एक वाक्य अच्छे से याद रख लो, चाहे तो कहीं लिख भी लेना, लिख के सामने रखो कहीं पर, नोबडी कैन मेक यू इन्फीरियर विदाउट योर परमिशन, है ना। जब वो भले कोशिश कर रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है कि तुम बहुत मोटी हो, है कुछ भी जो भी बोलना वो बोल रहा है, लेकिन तब आप अगर स्वीकार नहीं कर, जब आप स्वीकार करते तब प्रॉब्लम होता है। अगर आप स्वीकार ही नहीं करे, आप अगर ये कहे कि चलो मेरे में एक बात है लेकिन और अच्छा ही भी है, है मेरे में और पॉजिटिव बातें भी जीवन में है, तो संतुष्ट हो। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या तो जिसको कहे अच्छी इमेज, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने का सबसे अच्छा एंटीडोट है कि स्वमान को बढ़ाना। जिस व्यक्ति का स्वमान अच्छा है उसे कोई इरिटेट नहीं कर सकता, कितना भी कहे वो, आप उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे।
अच्छा, आप अपना एक अनुभव बताइए जिसपे आपको क्रोध आया।
अच्छा, एक उदाहरण सिंपल सा बताता हूँ कि भी मेरी माँ कभी बहुत बीमार थी, हाँ काफी समय तक बेड रिडन रही, उसका उनका देहांत हुआ उससे पहले बहुत समय तक बेड रिडन रही और माँ मेरे साथ ही रहती थी, और जो मेरे से बड़े भाई है वो ऐसे कोई कोऑपरेशन नहीं देते थे, कोई भी रीति से सहयोग नहीं देते थे, और एक बार आके कहने लगे तुमने ये नहीं किया ऐसा नहीं किया, माँ के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो तब मुझे इरिटेशन हुआ कि एक तो करते नहीं हो आप लोग कुछ भी और कहते ये नहीं किया ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा रेयर है, वो भी हो कंट्रोल होना चाहिए, तब भी असर्ट करना चाहिए। वास्तव में मैंने उससे भी ये सीखा कि मुझे उस परिस्थिति में भी एसर्ट करना चाहिए था कि आप लोग ये करो, तब डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, ओम शांति।